आज का लेख का शीर्षक है इच्छाएं और इसके लेखक हैं ललित गर्ग। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को गहराई से देखने पर यही प्रतीत होता है कि उसमें इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती हैं। किसी व्यक्ति की इच्छा जैसे ही पूरी होती है, उसमें नई इच्छा फिर पैदा हो जाती है। इस तरह वह लखपति फिर करोड़पति भी बन जाता है, किंतु उसकी लालसा चिर युवा बनी रहती है। जो धन संचय की लालसा से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें अपवाद मानना चाहिए। कबीर ने चेतावनी दी थी, नाव में पानी भर जाता है तो नाव डूब जाती है। घर में धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके संचय में विपत्ति भी आती है। प्रायः देखने में आता है कि धन के पीछे अपने ही पराये हो जाते हैं, और कहीं कहीं तो व्याधि इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इसलिए कबीर ने घर में बढ़े धन को निकाल देने की सलाह दी थी। मानव की इसी दुर्बलता को देखकर भगवान महावीर ने परिग्रह परिमाण की बात कही थी। उन्होंने धन को हेय नहीं बताया था, अपनी नितांत आवश्यकता की सीमा बंधवाई थी। यह सीमा संतोष की ही पर्याय थी। गांधी जी ने भी इस बात को दूसरे शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा था कि अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जो बचे उसका अपने को न्यासी मानो, अर्थात ट्रस्टी मानो, और उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करो। कहावत है कि मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है कि दूसरी पैदा हो जाती है। इस तरह उसका सिलसिला अनवरत चलता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति में फलाशक्ति होती है। यह फलाशक्ति ही इच्छाओं को उत्पन्न करती है। इसलिए गीता में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि कर्म करो, किंतु उसका फल पाने की इच्छा मत रखो। यदि फल की इच्छा नहीं होगी तो उसके फल की वासना मनुष्य से नहीं चिपटेगी। संतोष रूपी धन के बड़े अवरोधक हैं क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। जो अपने सिर पर मुकुट धारण करता है, वह सदा चिंतित रहता है। बात ठीक है, जिसकी तिजोरियां भरी रहती हैं, वह निरंतर भयाक्रांत रहता है, और उसे अपने धन की रक्षा के लिए फाटक पर संगीनधारी चौकीदार खड़ा करना पड़ता है। उसकी नींद हराम हो जाती है। उसके विपरीत जिसके पास संतोष का परम धन है, वह चैन की नींद सोता है। डर उसके पास फटक नहीं पाता। आज जो लेख पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है वाणी। मैं पिछले कुछ समय से दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर ऊर्जा कॉलम के अंतर्गत आने वाले सभी लेखों को पढ़ती हूँ, और इनका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर हुआ है। तो आज का लेख पढ़ती हूँ। वाणी मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिला एक अनमोल उपहार है। सद्वाणी मनुष्य के इस दुर्लभ जीवन को धन्य कर देती है, और दुर्वाणी इस महत्वपूर्ण जीवन को कलंकित। ईश्वर ने मनुष्य को वाणी केवल वैचारिक आदान प्रदान के लिए ही नहीं दी, बल्कि इसलिए भी दी है कि वह इससे स्वयं और इससे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करे तथा जीवन के प्रति उसकी दृष्टि भी बदल दे। उसी वाणी का प्रयोग कर एक भिखारी भीख मांगता है, और उसी का उपयोग कर एक अज्ञानी व्यक्ति डांट फटकार खाकर जीवन से दुखी और उसके प्रति क्रोधित हो जाता है। जबकि उसी वाणी का प्रयोग और उच्चारण कर एक ऋषि और भक्त मंत्र श्रष्टा बनकर अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। वाणी के उपयोग से कथावाचक असंख्य भक्तों का स्नेह प्राप्त कर उनके जीवन में खुशियों की बहार ले आता है। कोई वाणी का उपयोग कर दुख पाता है, जबकि दूसरा इसके उपयोग से दूसरों के दुख दूर करने में सहायक हो जाता है। हमारी वाणी से निकले शब्दों अथवा भाव संबंधी अभिव्यक्तियों को कोई क्षण भर के लिए भी याद नहीं रखना चाहता, लेकिन नानक, कबीर, रैदास या फिर मीरा की हजारों साल पहले कही गई वाणी को मिटाने, छुटलाने और भुलाने का साहस हम में आज भी नहीं हो सका है। वस्तुतः वाक अर्थात वाणी एक प्रकार की दुर्लभ साधना है, लेकिन यह जीवन के लिए साधना बने या अभिशाप, यह निर्भर करता है इसके प्रयोगता पर। जिस प्रकार सांसारिक मुद्रा का संग्रह कर बाद में उसका उपयोग किसी परमार्थ के उद्देश्य से करने पर वह मानवता के लिए उपयोगी, संग्रहणीय व उपकारी हो जाता है, इसके ठीक उलट उपयुक्त मुद्रा की संपूर्ण राशि का थोड़ा थोड़ा भाग यदि दुर्व्यसनों में खर्च होता रहता है, तो व्यय की गई वह धनराशि क्या किसी के लिए उपयोगी अथवा किसी के जीवन में खुशी लाने का किंचित कारक बन सकती थी? वाणी का सदुपयोग सकारात्मकता को जन्म देता है, जबकि दुरुपयोग पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, कुंठा, तनाव देता है, जो शारीरिक व मानसिक कई प्रकार की व्याधियों का कारण बनता है। हम प्रयास करें कि वाणी का सदुपयोग इस रूप में किया जाए जिससे सब शुभ हो। डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश जी ने यह लेख लिखा है, और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाणी एक अमूल्य संसाधन है। अपने हृदय के अंदरूनी विचारों को बाहरी दुनिया में प्रकट करने के लिए।